नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। पुस्तक का नाम है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री।
जी, और ये पुस्तक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1988 से 90 के बीच लिखी थी। ये उनकी महत्वपूर्ण क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने तो इस पूरी पुस्तक माला को अपना ज्ञान शरीर कहा था। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आग्रह भी किया था कि ये ज्ञान, ये विचार जन जन तक पहुंचें।
बिल्कुल, उनका मानना था कि यही ज्ञान शरीर उनके बाद भी जीवित रहेगा, मार्गदर्शन करेगा। और ये पुस्तक, जैसा नाम से ही जाहिर है, भाव संवेदनाओं पर, एहसासों पर बहुत गहरा चिंतन करती है।
सही कहा। और पुस्तक का जो मूल विचार है वो ये कि जब इंसान के अंदर ये भाव संवेदना की गंगोत्री, मतलब ये स्रोत, सूख जाता है तो वो कठोर बन जाता है, निष्ठुर। शायद आज समाज में इसी चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है।
हाँ बिल्कुल, इसी कमी को शायद ये पुस्तक उजागर करती है।
तो चलिए आज इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पुस्तक की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। वेद व्यास जी की चिंता से शुरू होती है।
हाँ, ये बहुत रोचक है। सोचिए जरा, वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, इतने सारे पुराण रचे, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा, ब्रह्मसूत्र बनाए,
इतना सब कुछ,
फिर भी चिंता। उन्हें संतोष क्यों नहीं था?
यही तो बात है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग ज्ञान तो ले रहे हैं पर उसे जीवन में उतार नहीं रहे हैं। बुद्धि का अहंकार बढ़ रहा है, कर्म कांडों में लोग फंसे हुए हैं पर असल सुधार नहीं आ रहा।
वो बहुत दुखी थे, व्यथित थे। और तभी उन्हें देवर्षि नारद मिलते हैं।
अच्छा, और नारद जी ने क्या रास्ता सुझाया इस समस्या का?
नारद जी ने कहा कि ये समस्या सिर्फ बुद्धि या ज्ञान के स्तर की नहीं है, असल मुद्दा है हृदय का, भाव संवेदनाओं के जागरण का।
भाव संवेदनाओं का जागरण मतलब?
मतलब जब तक इंसान के अंदर करुणा, दूसरों का दर्द समझने की भावना, ये सब नहीं जागेगा, तब तक उसका अहंकार नहीं पिघलेगा और बुद्धि भी सही दिशा में काम नहीं करेगी। इसे ही वो सोई हुई आत्मा का जागरण कहते हैं।
ये तो बहुत गहरी बात है कि असली बदलाव दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होता है। क्या पुस्तक में इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं?
हाँ बिल्कुल दिए हैं, और बहुत ही सशक्त उदाहरण है। जैसे सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध कितना भयंकर था सब जानते हैं, उसने उन्हें झकझोरा जरूर।
हाँ, पर कहते हैं कि एक खास घटना थी जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया।
जी, कहा जाता है कि युद्ध के बाद एक बूढ़े बंदी के कुछ मार्मिक शब्द थे, उसकी पीड़ा देखकर उनका हृदय एकदम पिघल गया और वहीं से चंड अशोक के अशोक महान बनने का सफर शुरू हुआ। भाव संवेदना जाग उठी
और तब उन्हें समझ आया कि असली वीरता किसी को हराने में नहीं बल्कि लोगों का दुख दूर करने में है, उनके दिल जीतने में है।
बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक सोच का बदलाव नहीं था, एक्शन में बदला। अशोक ने अपना राजसी ठाट-बाट छोड़ दिया, बिल्कुल सादा जीवन जीने लगे, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटी को भी जन कल्याण के लिए, धम्म प्रचार के लिए भेज दिया।
हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है।
पुस्तक यही बताती है कि जब सच्ची करुणा जागती है ना, तो इंसान चुप बैठ ही नहीं सकता, वो कुछ करने पे मजबूर हो जाता है।
अशोक का उदाहरण तो इतिहास का एक बड़ा अध्याय है, लेकिन यही संवेदना, यही करुणा व्यक्तिगत जीवन में कैसे असर डालती है, इसका भी उदाहरण है।
हाँ, महात्मा गांधी का उदाहरण है, बहुत मार्मिक है। जब उन्होंने दक्षिण भारत में एक गरीब नारी को देखा जिसके पास तन ढकने के लिए भी पूरी साड़ी नहीं थी, फटी हुई थी, तो उनके अंदर इतनी गहरी चोट लगी, इतनी संवेदना जगी कि उन्होंने उसी वक्त संकल्प ले लिया कि मैं जीवन भर अब सिर्फ आधी धोती ही पहनूंगा।
एक कर्मवीर से महात्मा बनने की यात्रा में ऐसे कई पड़ाव आए होंगे। उन्होंने कहा भी था कि झूठा बड़प्पन और सच्ची महानता दोनों एक साथ नहीं चल सकते।
हाँ बिल्कुल, और सच्ची महानता कहाँ से आती है? आम आदमी के दुख दर्द को महसूस करने से, और सिर्फ महसूस करने से नहीं, उसे दूर करने के लिए जुट जाने से। ये भाव ही हैं जो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठाते हैं।
जीगा।
एक और उदाहरण है पुस्तक में, ठक्कर बापा का। वो एक पढ़े लिखे इंजीनियर थे, अच्छी नौकरी, सुख सुविधाएं सब थी, पर एक बार किसी वंचित समुदाय के व्यक्ति की पीड़ा, उसके हालात देखकर, उसकी बातें सुनकर वो इतने द्रवित हुए।
अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने?
उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना सारा आराम छोड़ दिया और उन्हीं लोगों के बीच जाकर रहने लगे जिनकी वो सेवा करना चाहते थे, उन्हीं की तरह। पुस्तक इसी को संवेदना की दिव्य दृष्टि कहती है, दूसरों की पीड़ा को न सिर्फ देखना बल्कि महसूस करने की क्षमता।
तो इन सभी उदाहरणों और चर्चा का सार क्या है? ये पुस्तक हमें असल में क्या याद दिलाना चाहती है?
देखिए, ये पुस्तक हमें यही याद दिला रही है कि हमारी इंसानियत का आधार, हमारी मानदीय गरिमा, आपसी भाईचारा, एक मीनिंगफुल लाइफ, इन सब की जड़ हमारी भाव संवेदनाएं ही हैं, फीलिंग्स, इमोशंस।
हाँ, इनके बिना ज्ञान और बुद्धि भी अधूरे हैं, या शायद खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे व्यास जी ने पहले ज्ञान पर जोर दिया, पर असल समाधान नारद जी ने भाव जगाने में बताया।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव के नजरिए से देखें तो ये संवेदनाओं का जागरण सिर्फ व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये आने वाले युग की जरूरत है। एक बेहतर दुनिया, धरती पर स्वर्ग लाने का आधार यही भाव संवेदनाएं बनेंगी।
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी तो तर्क वितर्क की जगह प्रेम और श्रद्धा पर, भाव पर जोर दिया था।
हाँ, वही भाव जो हमें मैं और मेरा से निकालकर हम और सबका की ओर ले जाता है।
तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन छोटे छोटे पलों को कैसे पहचाने जब हमारे अंदर की ये संवेदना, ये करुणा जागने की कोशिश कर रही हो।
हाँ, और जब पहचान लें तो उसे सिर्फ महसूस करके छोड़ न दें, उसे पोषित कैसे करें, उसे कर्म में कैसे बदलें, इस पर सोचना चाहिए।
बिल्कुल।
और हाँ, प्रकाशक का भी यही अनुरोध है, जैसा पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि उनके इस ज्ञान शरीर को, खासकर इस पुस्तक को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि ये चेतना, ये संवेदना समाज में और फैले।
जरूर, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।